आदिक जीते सब जग जानिया, जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभूप देश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिगर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। अहंकार का भाव न रखू, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत व्यवहार करूं। बने भावना ने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, ने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं।
महावीर स्वामी की, आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज, मोक्ष मार्ग में जरूरी जो सात तत्व हैं, जिनके अर्थ का श्रद्धान करना ही सब में दर्शन है, उन सात तत्वों को जानने के क्रम में निर्जरा तक आ गए। अपनी यात्रा लगभग पूरी होने को है, बस ये आखिरी स्टॉपेज है, उसके बाद सीधे हमें मोक्ष में उतर जाना है। एक देश कर्मों के क्षय होने का नाम निर्जरा कहलाती है, इसके बाद सीधा मोक्ष हो जाता है। अब निर्जरा में तपसा निर्जरा जा, संवर और निर्जरा अगर होती है तो वो तप से होती, और इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध कर देने का नाम ही तप है। ऐसे अपन 12 प्रकार के तपों का वर्णन लगभग पूरा कर चुके हैं। तप की समाप्ति भी ध्यान में जाकर के ही होती है। वैसे एक तप दूसरे तप से ज़्यादा या कम नहीं है, ये अपन मान के चले। अनशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आखिरी में रखा हुआ ध्यान ज़रूरी है। अगर उस सब की शुरुआत हम अपने से शुरू करते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं है, सब बराबर है। और अगर हम दूसरे के सापेक्ष होकर के करते हैं, पर वस्तु के सापेक्ष होकर के करते हैं, तो फिर थोड़ी गुंजाइश निकलती है कि उसमें कमी बेशी आ सकती है। हम 6 बाह्य तप पढ़ चुके, अनशन, अमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तप, ये बाह्य तप। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग, पहले विसर्ग बता दिया है फिर शायद ध्यान बता रहे हैं, शेष करते हैं, विसर्ग पहले कर दिया है फिर ध्यान, ठीक है। तो 5, इसमें से भी हम 5 की जानकारी कर चुके हैं, अब शेष रह गया है अपने लिए ध्यान। तो ध्यान की परिभाषाएं अलग अलग बहुत सारी बनाई गई हैं। एक परिभाषा जो कि तत्वार सूत्र में है वो ये है कि उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तम, ऐसी परिभाषा कही है। उसका अर्थ क्या हुआ? उत्तम सहनन वाले के किसी एक विषय में चित्त का रोक लेना, ये ध्यान है, और ऐसा अंतर्मुहूर्त तक ही संभव है। इसका नाम सीधा सीधा कह दें, उत्तम सहनन वाले के एक अंतर्मुहूर्त तक जो किसी एक विषय में अपने चित्त की प्रवृत्ति को रोक लिया जाना है, उसका नाम ध्यान है। तब फिर क्लैरिफिकेशन करते हैं, आगे जा करके कि रोकने का मतलब क्या है, चेकअप कर देना है। रोकने का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर हमें बाकी से हटा करके एक पर लगा देना है, ये तो अर्थ है ही, लेकिन रोक देने का अर्थ यहाँ पर विशेष खोलते हुए कह रहे हैं वो ये है कि जब हमारा ज्ञान कपती हुई दीपक की नौ की तरह होता है तब तक वो ज्ञान कहलाता है, ध्यान नहीं कहलाता। लेकिन जब हमारा ज्ञान दीपक की एक सीधी लौ की तरह अकंप हो जाता है तब वो वही ज्ञान ध्यान कहलाता है। हमें ऐसे ध्यान की उपलब्धि करनी चाहिए और ऐसा ध्यान 12 अनुप्रेक्षाओं के बराबर चिंतन करने से होता है। अपन 12 अनुप्रेक्षाएं भी पढ़ चुके हैं और सामायिक भी जान चुके हैं कि सामायिक क्या होती है, और आज अपन ध्यान पढ़ रहे हैं। तो सामायिक करना, जाप देना, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना, ध्यान करना, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ये सब सीढ़ियां हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि आधार और आधेय का जैसे संबंध होता है वैसे ही ध्यान और अनुप्रेक्षा में संबंध है। अनुप्रेक्षाएं आधार हैं, ध्यान आधेय है। ऐसा आधार आधेय का संबंध उन्होंने घटाया है, अर्थात जिन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करके ही या जिन अनुप्रेक्षाओं का ध्यान में चिंतन किया जाता है वह आधार कहलाती है और धर्म ध्यान आधेय हो जाता है, इस तरह की बात कही है। दूसरी परिभाषा ध्यान की है, तल्लीनता का नाम ध्यान है। दूसरा और परिभाषा बता दूं, एक परिभाषा बताती है कि जब ध्यान निष्कंप हो जाता है, अचल हो जाता है, किसी एक चीज में बिल्कुल टंकोत्कीर्ण, जैसे एक ज्ञायक पिंड है, हमारा आत्मा टांकी से उकेरी गई पत्थर में जैसे लकीर होती है जो कि जरा भी कपती नहीं है, ऐसे ही जब ज्ञान हमारा हो जाता है तब वो बन जाता है ध्यान। और दूसरी परिभाषा तल्लीनता का नाम ध्यान है। अब तक लीन किस में लीन होना, तो फिर ध्येय की तरफ भी हमें दृष्टिकोण डालना पड़ेगा। आज अधिकांश लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन ध्येय की तरफ ध्यान नहीं रहता उनका कि हमारा ध्येय क्या है। हमारा ध्येय हो सकता है पैसा, हमारा ध्येय हो सकता है हमारे सांसारिक कोई भी काम, उनमें भी हमारा ध्यान लग सकता है, लगा ही रहता है 24 घंटे हमारा ध्यान, न जाने कितनी कितनी बातों में हमारा ध्यान रहता है। पैसे गिनते समय तो बड़ा कंसंट्रेशन रहता है, वैसा ध्यान नहीं होता। हम पेपर लिख रहे हैं, 3 घंटे तक किसी भी पेपर लिखने वाले से पूछ लो, एग्जामिनेशन देने वाला सब कुछ बन रहा हो और 3 घंटे वो लिखने बैठा हुआ है, वो कंसंट्रेशन, वो तो अच्छे अच्छे योगी को नहीं लग पाएगा कंसंट्रेशन। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है 3 घंटे तक लगातार बाजू में से ट्यून निकल गया है, पानी का ग्लास लेकर के निकला है, या कि टीचर ने आवाज़ दी है, किसी ने सप्लीमेंट्री कॉपी मंगाई है, कोई ध्यान नहीं है दुनिया में क्या हो रहा, हम तो बस याद है जितना उत्तर लिखने में लगे हों। 3 घंटे तक लगातार इधर पेपर देखा और इधर लिखना, इधर पेपर देखा और इधर, वो भी एक ध्यान है, लेकिन उस ध्यान का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं। 2 ध्यान अच्छे हैं, 2 ध्यान बुरे हैं, 2 ध्यान संसार की तरफ ले जाने वाले हैं, 2 ध्यान मोक्ष की तरफ ले जाने वाले हैं, जिसमें 8 ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार के हेतु हैं, जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वे मोक्ष के हेतु हैं। आज अपन इन 4 प्रकार के ध्यानों के बारे में समझेंगे। अपन ने ध्यान की परिभाषा समझ ली, ध्यान के भेद भी हो गए कि 4 भेद हैं, 2 संसार की तरफ ले जाने वाले, 2 मोक्ष की तरफ। अब आचार्यों ने ये नहीं कहा कि कौन से करना कौन से नहीं करना, नहीं, डिसाइड आप करते हैं। संसार में जाना है हम बता देते हैं, 8 ध्यान और रौद्र ध्यान करना शुरू करो, संसार का विस्तार शुरू हो जाएगा, हो ही रहा है। और अगर मोक्ष की तरफ जाने का विचार है तो इन 8 रौद्र ध्यान को छोड़ो और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ हम अपना कदम बढ़ाएं। अब ध्येय की बात चली थी, असल में ध्यान के लिए 4 बातें बहुत ज़रूरी हैं। मैं पहले जनरल आपको इन सब बातों को बता दूं, फिर बाद में एक एक डिवाइडेशन करके सबके बारे में बता दूंगा जितना शॉर्ट में हो पाएगा, क्योंकि शॉर्ट में ही हो सकता। वैसे तो ध्यान में कुछ करना नहीं होता है, एक्चुअली जो कुछ भी करना धरना है ना वो सब रुक जाए, उसी का नाम ध्यान है। लेकिन उस करने धरने को रोकने के लिए कितना कुछ करना धरना पड़ता है ये अपन को यहाँ समझ लेना है। को पूरी ज़िंदगी लग जाए अपन करते ही रहें और न लग पावे ध्यान, तो उसका तरीका हमें मालूम होना चाहिए। हम ध्यान करने बैठे तो हम पहले ये सोच लें कि हमारा ध्येय क्या है। ध्येय शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, और जो शुभ ध्येय होता है उसी से ध्यान प्रशस्त कहलाता है, और जो अशुभ ध्येय होता है उसी से ध्यान अप्रशस्त कहलाता, अशुभ ध्यान कहलाता। तो पंच परमेष्ठी, सात तत्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्य, या कि संसार, शरीर और भोग, इन सब के स्वभाव के बारे में जो कुछ भी निरंतर चिंतन किया जाता है, इनको जब ध्येय बनाया जाता है तो ये सब शुभ ध्यान है। और जब सांसारिक उपलब्धियों, भौतिक सुखों, वैशेक सुखों की तरफ को ध्येय बना करके हम जो कुछ भी सोचते हैं उसमें भी हम सोचते हैं, अभी हम बताएंगे कि कैसे सोचते हैं, उसके बारे में हमारा बड़ा ध्यान रहता। अगर हम ध्यान से नहीं चलाएं तो गृहस्थी मिट जाएगी, बड़ा ध्यान है हमारा गृहस्थी चलाने में, एक सामान्य आदमी के बस का नहीं है, तो उसमें भी हमारा ध्यान रहता है। संसार बढ़ाने वाले का भी ध्यान वही ध्यान है, उतनी ही ऊर्जा वाला ध्यान है जितना कि मोक्ष पर चलने वाले के पास ऊर्जा है ध्यान की, उतनी ही दोनों के पास बराबर है। लेकिन बस हम आहार जी में जब कार्तिक अनुप्रेक्षा आचार्य श्री पढ़ा रहे थे, तब उसमें एक प्रकरण आया था और उस प्रकरण में लिखा था कि राम की मृत्यु हो, इस भावना के साथ में जब शांतिनाथ भगवान के पास बैठ करके रावण मंत्र का जाप करता था, तब उसको जो कंसंट्रेशन होता था, काश अगर रावण ने उतना ही कंसंट्रेशन अपने कर्मों की निर्जरा करने के इंटेंशन से कर लिया होता तो उसको मोक्ष हो जाता उसी भाव, ऐसा लिखा आचार्य। जितना कि इस इंटेंशन से, इस ध्येय से किया था, माने ध्येय बहुत कीमती है, मेरा कहना ये है, अपन ध्येय की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान करने वाले लोग ध्यान पे जितना ध्यान रखते हैं उतना ध्येय पर नहीं रखते हैं। ध्येय हमें बना लेना चाहिए कि हमारा ध्येय क्या है। पंच परमेष्ठी में अनंत के स्वरूप पे ध्यान किया जा सकता है, सिद्धि के स्वरूप पे, आचार्य के स्वरूप पे, सब संसार के स्वरूप पर भी ध्यान किया जाता है, ये सब हमारे ध्येय शुभ हैं, और इनकी इनके साथ जो ध्यान होता है वो शुभ ध्यान कहलाता है। बाकी सब जो भी और दीगर ध्येय हैं वे सब अशुभ की तरफ ले जाते हैं। ये बात ध्यान में बहुत ज़रूरी है। ध्यान के लिए यम और नियम दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो आठ चीज़ें कही गई हैं, ध्यान के आठ अंग हैं, लेकिन अपन ये ध्यान रखें कि जिसको कोई ना कोई नियम होगा, या तो आजीवन या थोड़े समय के लिए। यम होता है आजीवन और नियम होता है थोड़े से समय के लिए। जब तक इसमें हम नहीं बंधेंगे तब तक ध्यान की उपलब्धि ज्ञानवाणों में लिखा है कि हो नहीं सकती। ये फर्जी बात है कि हम 24 घंटे संसार के कामों में लगे हैं तो 10 मिनट के लिए रूपातीत और भावातीत और फलाना कौन कौन सा ध्यान करना शुरू कर दे। अरे कैसे हो जाएगा, आपने तो कोई नियम संयम इत्यादि लिए ही नहीं है, विषय भोगों में आप पूरे 24 घंटे काट रहे हैं, किसी बात का त्याग नहीं है, तो कैसे हो जाए। आसन की सिद्धि होना चाहिए, जिस आसन पर हम बैठते हैं वो आसन हमें मजबूत होना चाहिए, तो आसन भी ज़रूरी है। हमारी अपनी सांसों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, कितनी सांसें निकल गई, कितनी सांसें हम ले चुके, इस बात का ख्याल तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत सदी हुई सांसें होना चाहिए, बैलेंस्ड रेस्पिरेशन सदा हुआ होना चाहिए, हमारा सांस उच्छ्वास का तरीका भी सदा होना चाहिए। फिर प्रत्याहार भी उसमें शामिल किया गया है, विषय कषाय की तरफ जाते हुए मन को रोकने का तरीका आना चाहिए, प्रत्याहार। जैसे कि हम इसका उदाहरण हमेशा देते हैं, लोग कहते हैं हमारा मन चला जाता कहीं कहीं, कहाँ जाता है मन, वहीं जाएगा जहाँ रोज उसको घुमाते हो, और कहाँ जाएगा, नई जगह थोड़ी जाता है। अपन घुमाते हैं उसको 23 घंटे और 50 मिनट उसको घुमाते हैं कि घूमो, और फिर बाद में 10 मिनट के लिए कहते हैं कि बैठ जाओ, अब चुप कैसे बैठेगा वो, पंखा बंद कर दो तो भी चलता रहेगा, थोड़ी देर तो चलता ही रहेगा, वहाँ से ऑफ हो जाने के बाद भी चलता रहता, घूमता रहता कि नहीं। इसी तरह हमारा मन 23 घंटे 50 मिनट अगर घूम रहा है और हमने किसी बात का त्याग नहीं किया है तो वो तो उधर से हट करके इसमें लगेगा कैसे। ध्यान में करना कुछ नहीं पड़ता है, ध्यान जो कि जो ऊर्जा हमारी अशुभ में जा रही है वहाँ से उसको रोकना, अशुभ में जाती हुई ऊर्जा को रोकना, और नई ऊर्जा तो कहीं से आएगी नहीं, उसी ऊर्जा को जो अशुभ में जा रही थी उसको रोक करके, कन्वर्ट करके और शुभ की तरफ ले जाना, इसका नाम ही ध्यान है, और कुछ नहीं करना है। तो भैया क्या करना, सीधा सीधा ध्यान करने बैठे हैं या कि चिंतन करने बैठे हैं, चिंतन भी एक तरह से ध्यान ही है, निरंतर चिंतन का नाम ध्यान है ऐसा दिखा है। तो जब अपन चिंतन करने बैठे हैं, नमोकार मंत्र भगवान के, अनंत भगवान का स्वरूप का चिंतन करने बैठे, उस समय मन अपना कहीं मान लो जा रहा है, दुकान में जा रहा है या कि घर गृहस्थी के कामों में जा रहा है, तो उसको कहो, उसको समझाओ, अपने मन को अपने आप से समझाना। फिर बाद में दूसरी वो बात बताऊंगा कि कैसे हम अपना स्वाध्याय ध्यानात्मक कर सकते हैं, कैसे हम अपने ज्ञान को ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा ज्ञान ही ध्यान हो जाएगा, फिर हमें ज्ञान के लिए जैसे दो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है वैसे किसी की जरूरत ना पड़ेगी। फिर हम अकेले अकेले ही ज्ञान करेंगे और अकेले अकेले ही जैसे ध्यान में किसी की जरूरत नहीं होती, फिर हम ध्यान में भी उतर जाएंगे। ध्यान में दो नहीं हो सकते और ज्ञान एक अकेले से नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है। और झगड़ा करने हुए तो चार पाँच जने तो चाहिए ही, कम से एक कारिकाई हम भूल जाते हैं कि झगड़ा करने के लिए चार पाँच लोग, ध्यान करने के लिए एक और अध्ययन करने के लिए दो, ऐसा संगीत के लिए तीन चाहिए, एक बजाने वाला, एक नृत्य करने वाला, एक गाने वाला, इस तरह से उनने संख्याएं दी। तो खैर वो छोड़िए, जब हमारा मन कहीं जा रहा है और जहां हम ले जाना चाह रहे हैं वहां नहीं जा रहा है, तो उसको प्रेम से समझाओ कि कहां चले गए, देखो इधर आओ। इस तरह अभी तो कर रहे थे नमो अरहंतानम और चले गए दुकान में, वापिस आओ, नमो अरहंतानम कहो और भगवान का जो स्वरूप है उसका चिंतन करो। मन को समझाओ बार बार, जाते हुए मन पर आंख रखना पहला काम है ध्यान में। कहाँ जा रहा है, हमारी चौकसी उस पर बैठी हुई है, हमने उस पर प्रहर लगा दिया है कि कहाँ जाता है, देखेंगे, जाने दो, पहले तो जाने दो उसको। इसीलिए कम से कम अंतर्मुहूर्त कहा है ध्यान के लिए। प्रैक्टिस करने वाले को भी 48 मिनट धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्यवान व्यक्ति ही ध्यान कर सकता है। 10 मिनट नहीं हुए अभी, बहुत तो है नहीं, मन तो चलो जाते हैं, अच्छो तो अपन कछु काम में लग जाओ, पढ़ने लगो तो वो ज़्यादा ठीक है। ऐसा नहीं होगा, अभ्यास की दशा में तो मन हजार हजार बार हजार हजार तरफ जाएगा, क्योंकि हमेशा घूमता रहता, उसको धीरे से वापस लाओ, एंगेज करो, मन को एंगेज करना ध्यान की प्रक्रिया में, एंगेजमेंट। जैसे कि माँ बहुत अच्छे से जानती है लेकिन वो अपने बारे में लागू नहीं करती, बेटे के बारे में तो लागू कर देती। वो रोटी बेल रही है और बेटे जी ऐसे ऐसे घुटने से दौड़ करके आते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं अक्सर, हम नहीं बेलने देंगे। अब तो पता नहीं मुझे मशीन आ गई हो तो रोटी की, मैं नहीं मालूम, अगर पहले तो बेली जाती, अब तो बहुत दिन से देखी भी नहीं है कि बेलत कैसे, तो बेलते हैं ना बेलन से, तो बेलते समय जो है हाथ पकड़ लेता था बेटा, तो क्या करते थे उसी में से एक छोटी सी तोड़ी और गोल गोल फेंक दी, देखते वो उठा के ला, जब तक वो उठा के लाएगा जब तक तो बिलाई गई पूरी, जब तक वे वापस आए जब तक एक और तरफी फेंक गए वहाँ पर, एंगेज कर दिया, कहाँ यहाँ कहाँ हमको परेशान कर रहे हो, चलो थोड़ा सा शिखर जी घूम के आए। अपना ध्यान नहीं लग रहा है तो मन को अपने मंदिर में ले जाके लगाना, मन को शिखर जी में जाके लगाना, जिस तीर्थ क्षेत्र का दर्शन किया है वहाँ एंगेज कर देना उसको, मन को अशुभ से हटा करके शुभ में एंगेज कर देना, ये पहला प्रयास है ध्यान की प्रक्रिया। तो अपन आज चार प्रकार के ध्यान समझेंगे और ध्यान की ये प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया और ध्यान के अंग बनने समझ लिए, ध्यान के चार अंग और बताए हैं जिसमें से ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल, इन चार का विचार करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया है वो सही है कि नहीं, ध्यान करने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, जो हमने अंग बताए हैं यम नियम संयम पूर्वक ध्यान करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है ध्यान के ध्येय हमारा शुभ होना चाहिए और ध्याता हम कैसे हैं, हमें धैर्यवान होना चाहिए, जितेंद्री होना चाहिए, ये सारी कंडीशन ध्याता की होना चाहिए। और ध्यान का फल क्या मिले मुझे, संसार की आकांक्षा नहीं, ध्यान का फल मुझे कर्मों की निर्जरा हो, मुझे संतोष और शांति मिले, ये ध्यान का फल हमारे दिमाग में बना रहे तो हमारा ध्यान सही होगा। ध्यान के लिए कई लोग ऐसा पूछा करते हैं कि कौन सा आसन, कौन सा समय और कौन सी दिशा, इन बातों पर भी अपन थोड़ा सा समझ लें। तो हमने पढ़ा, उसमें लिखा कि ध्यान के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, ध्यान के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा बेहतर समय अगर किसी ध्यान करने वाले से पूछो तो वो यही कहेगा कि जब सूरज ढलने को है, रात आने को है, तब ध्यान का एक समय है, और जब सूरज उगने को है, रात जाने को है, तब एक समय ध्यान का है। ये दो समय ध्यान के बहुत अच्छे समय, जिनको सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं और शाम को संध्या काल है, उस समय में ध्यान बहुत अच्छे से हो सकता है। ऐसा वैसे जो करना चाहें जब चाहे तब भी कर सकते, कोई समय का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आसन या तो खड़गासन हो या कि पद्मासन हो, ये दो आसन अपने यहाँ पर वैलिड मानी गई हैं, इनको सही माना गया। सुखासन से बैठ गए, हमको जिसमें ज़्यादा देर तक बैठने में सुविधा है उस आसन से हम बैठ सकते हैं, जिस आसन से खड़े होने में सुविधा है उस आसन से खड़े हो सकते हैं। हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए इसकी भी जानकारी होना चाहिए, हमारा मुख या तो पूर्व की दिशा में होना चाहिए या कि उत्तर की दिशा में। अब पूर्व की दिशा में क्यों होना चाहिए और उत्तर की दिशा में क्यों होना चाहिए? तब इसके बारे में कुछ लोगों ने लिखा है, लॉजिकल आंसर है, अभी साइंटिफिक मैं नहीं कह सकता लेकिन लॉजिकल आंसर है वो ये कि पूर्व दिशा यमांतक दिशा कहलाती है, पूर्व दिशा यमांतक दिशा कहलाती है। जैसे कि सूरज पूर्व की दिशा में उग करके अंधेरे का नाश करता है, ऐसे ही पूर्व की दिशा हमारे जीवन में रोशनी भरती है, हमारे जीवन को जागृत करती है और मृत्यु का नाश करने वाली दिशा है, इसलिए उसको यमांतक दिशा कहा गया, पूर्व दिशा अर्थात मृत्यु का नाश करने वाली जीवनदायिनी दिशा जो है वो पूर्व दिशा है। तो उस दिशा में ध्यान की सिद्धि अच्छी तरह होगी। और दूसरी दिशा है पश्चिम की दिशा। पश्चिम में क्यों नहीं करना? पश्चिम को बोलते हैं पद्मांतक दिशा या कि मनांतक दिशा। पद्म और मन एक ही बात है, मन को कमल कहा गया है। जैसे कि डूबते हुए सूरज की रोशनी में पद्म बंद हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा मन, अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ बैठ करके ध्यान करेंगे तो हमारा मन मुकलित हो जाएगा, खिलेगा नहीं, हमारा मन बंद हो जाएगा। इसलिए पश्चिम की दिशा में बैठ करके ध्यान करने का निषेध कर दिया। ये दिशा पद्मांतक या मनांतक दिशा है। फिर उत्तर की दिशा, उत्तर की दिशा विघ्नांतक दिशा है, विघ्नांतक विघ्नों का नाश करने वाली दिशा है, इसलिए उत्तर दिशा भी अच्छी दिशा मानी गई है। और दक्षिण की दिशा के लिए शब्द आया है प्रज्ञांतक दिशा है। दक्षिण की दिशा हमारी बुद्धि को नष्ट करने वाली दिशा है, इसलिए दक्षिण की दिशा में भी ध्यान बैठ करके नहीं करना चाहिए। इन चार के लिए यमांतक, पद्मांतक, विघ्नांतक और प्रज्ञांतक, ये चार दिशाओं के लक्षण हैं। इसलिए पूर्व और उत्तर की दिशा ही सर्वोत्तम दिशा है। उसी दिशा में भगवान की मूर्ति का मुख भी रहता है, हमें भी उसी दिशा में बैठ करके ध्यान, सामायिक, जाप, चिंतन सब करना चाहिए। ये इतनी बातें पहले। अब एक चीज़ और है कि अगर हम आलंबन लेते हैं तो हमें वो आलंबन कहाँ कहाँ लेना चाहिए। ये त्राटक व्राटक करते हैं कई लोग जो ध्यान की प्रक्रिया में, तो अपने यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं कही। अपने यहाँ तो शरीर के ही विभिन्न अंगों को ध्यान के केंद्र मान करके वहाँ ध्यान केंद्रित करने की बात कह दी गई है। हमारे दोनों आँखें ध्यान के लिए केंद्रित करने के स्थान हो सकते हैं, हमारे दोनों कान ध्यान को केंद्रित करने के स्थान हैं, फिर उसके बाद हमारी नासिका का अग्रभाग। नासिका के अग्रभाग पे एक बात ध्यान रखना कि दोनों आँखों से नासिका का अग्रभाग देखोगे तो नहीं दिखेगा, और आपको लगेगा कि झूठ बात है, कोई नहीं देख सकता, लेकिन नहीं, दोनों पलकें हल्की सी खोलें और एक पलक को ज़्यादा बंद करें, एक तरफ की पलक ज़्यादा थोड़ी सी खोलें, इसकी अपेक्षा ज़्यादा ये खुली है तो ये टो दिखने लगी इस तरफ से, और इस तरफ की थोड़ी सी बंद करके इसको ज़्यादा खोलने से ये वाली टो, और फिर बाद में ऐसा करते करते सेंट्राइज जब हो जाए तब फिर बीच की, नहीं तो माथे में यहाँ पर झंझनाहट होने लगे, ध्यान व्यान सब एक तरफ, सब ध्यान यहीं पर चला जाए। तो ऐसा सोच समझ के करना, नासिका के अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करना बहुत सरल नहीं है। तो दोनों आँखें, दोनों कान, तीसरे नंबर नासिका का अग्रभाग, चौथे नंबर ये ललाट, माथे पर कहीं पर भी ध्यान किया जा सकता है, मुख पर भी ध्यान होता है, मुख पर भी ध्यान का केंद्र है, और नाभि में तो ध्यान का केंद्र है ही, मस्तिष्क पर भी ध्यान का केंद्र है, हमारे हृदय में भी ध्यान का केंद्र है, और तालु पर भी, इसके नीचे यहाँ पर भी ध्यान का केंद्र बताया गया है, और वो जाकर के यहाँ तक आता है, विशुद्धि चक्र कहलाता है, नौ चक्रों में से एक चक्र, तो वो तालु और यहाँ से पूरा यहाँ तक ध्यान का केंद्र है, और ये भौहों के बीच में ये वाला भी ध्यान का केंद्र है, यहीं पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, इन पर कंसंट्रेशन किया जा सकता है, ये ध्यान के केंद्र हैं। जो लोग बहुत ध्यान करने वाले हैं ये उनकी बात है। नमोकार मंत्र के लिए फिर भी मैं एक बात बताऊँ आपसे कि अरहंत का ध्यान ठीक सेंटर में होता है, सिद्ध का ध्यान यहाँ पर होता है, आचार्य का ध्यान यहाँ पर होता है, उपाध्याय का ध्यान हृदय देश में होता है, नाभि पर नमो लोए सब साहुनम, जब नमो लोए सब साहुनम नमोकार पढ़ना हो तो हमारे सारे चक्र जागृत हो जाएं, तब नमोकार मंत्र सक्सेस है, नहीं तो ऐसे नमोकार मंत्र तो अपन रोज पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि नाभि से हो, हृदय क्षेत्र भी जागृत हो, कंठ भी जागृत हो, और ये पूरा का पूरा मस्तिष्क झंकृत हो करके और यहाँ तक जा करके उसकी झंकार पहुँचे, तब नमोकार मंत्र पूरा। पहले इन स्थानों पर नमोकार फिक्स करना पड़ता है, थोड़ी देर लगती है, इन पे सब पे नमो अनंतानंद नमो सिद्धानंद अपनी अपनी जगह पे फिक्स करना पड़ता है, फिर बाद में एक एक नौ उठानी पड़ती है, तब जाकर के वो पूरी की पूरी सबको जागृत करते हुए निकल जाता है, तब वो नमोकार मंत्र का सही, चाहे एक बार उच्चारण किया जावे लेकिन पूरा का पूरा झंकृत हो जावे जीवन, पूरा का पूरा उस क्षण एक क्षण के लिए जीवन कुछ और हो जावे, तब वो कीमती है, उस समय कुछ भी ध्यान न रहे सब कुछ भूल जावे। इस तरह ये ध्यान की कई प्रक्रियाएं अलग अलग हैं और जो जैसा ध्यान करता है उसके हिसाब से है, मैंने आपको ये जनरल एक प्रोसेस बता दी। अब अपन इनके भेद प्रभेद समझ लें, अपन कई तो ध्यान जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो अपन कर भी नहीं सकते, शुक्ल ध्यान अपन कहाँ कर सकते, धर्म ध्यान है तो धर्म ध्यान में से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो आज अपन को समझ लेना है। और मैंने जो बताया अभी आपको प्रक्रिया, वो सब धर्म ध्यान की प्रक्रिया है स्टार्टिंग में, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचना चाहिए, या तो उनसे बचें, पहले उनसे बचना चाहिए फिर बाद में ये हो सकता है संभव। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचे बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता, हम धर्म ध्यान करते रहें और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ना छोड़ें तो ये काम नहीं बने। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मंदिर में आकर के चैन से एक घंटे बैठना फिर भी सरल है, लेकिन 23 घंटे भी, ये एक घंटे वाली चैन, ये एक घंटे जो चैन मिली है वो 23 घंटे बरकरार रहेगी अगर गृहस्थी में, तो मैं मान सकता हूँ कि उस आदमी ने एक घंटे से ध्यान किया, नहीं तो एक घंटे यहाँ पर रमोकार मंत्र करके जाने वाला, पूजन प्रक्षाल करके जाने वाला व्यक्ति अगर 23 घंटे घर में पैर रखते ही साथ किलकिल शुरू कर देता है, गुस्सा और नाराजगी हर एक चीज़ पर दिखाने लगता है, जरा जरा मैं अस्थिर हो जाता, जरा जरा मैं अपना धैर्य खो देता है, वो व्यक्ति अभी ध्यान का अभ्यास ही नहीं, जिसकी गृहस्थी बिगड़ी रखी हुई है उसका मंदिर में आना है तो बहुत अच्छा, लेकिन घाटे का सौदा है, घाटे वाला सौदा है, जो यहाँ से लेके जाना था अपने हाथ में वो हम यहीं छोड़ करके वापस लौट जाते हैं, आ तो जाता है बहुत सारा हाथ में, लेकिन पता नहीं क्या होता है मंदिर की सीढ़ी उतरते ही यहीं छूट जाता है, हमें तो लगता है जैसे कि कोई देव कृपा करके नारकी का शरीर नरक में से लाना भी चाहे वहीं बिखर के गिर जाता है। कई बार तो ऐसा भी लगने लगता है कि क्या हुआ आखिर, अब भी मेरे पास ऊपर सीढ़ी पे जब बैठे थे तो बड़ा प्यारा मन था इनका और बड़ी प्यारी बात कर रहे थे, और ज़रा नीचे सीढ़ी पे उतरे मैं उनके पीछे ही आ रहा हूँ यहाँ लघुशंका के लिए और फिर उनकी बात सुनता हूँ, तो लगता है कि अरे ये तो फिर चिंतित हो, अभी ऊपर बैठे थे तब तो कुछ और थे और अब जो नीचे उतरे हैं अब भी 2 मिनट ही तो हुए और फिर उन्होंने जरा सी बात में ही और तेजी आ गई इनके अंदर, मेरे पास तो बड़े शांत बैठे थे, तो इसका मतलब क्या, हम अपने अंदर कोई परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो शाश्वत हो वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए ध्यान हमारा सक्सेस नहीं हो पाता थोड़ी देर किया हुआ। निरंतर जो ध्यान का अभ्यास करता है वो धीरे धीरे अपने जीवन में सब में धैर्यवान शांत परिणामी स्थिर चित्त वाला हो जाता है, ये ध्यान का फल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, हमारी जो बार बार क्षणिक क्षण भर में जो क्रोध मान माया लोभ इत्यादि आ जाते हैं वो कषाएँ मंद तो होनी चाहिए, ये ध्यान के फल पर विचार करके फिर ध्यान करना चाहिए। 4 प्रकार का ध्यान होता है, रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं, रुद्र क्रूर, जिस ध्यान का आशय क्रूर होवे रुद्र, क्रूर आशय वाले ध्यान का नाम रुद्र ध्यान है, जिसमें हिंसा आदि पाप कर्म करके भी गर्वपूर्वक लोगों के सामने कहने की आकांक्षा होवे, किस तरह से कहूँ ये बार बार चिंतन चलता रहे, वो रौद्र ध्यान है। अपनी कारस्तानी बतावे की आदत है, और कारस्तानी कैसी, अच्छी लपेट लपाट करके, ऐसा नहीं आप करी तो कारस्तानी है, मैंने गलत किया है लेकिन उसको बड़े तरीके से की, देखा क्या क्या बनाया हमने उसको आज, और उसमें आनंद ले रहे हैं। रौद्र ध्यान करने वाला 4 प्रकार से ध्यान करता है, हिंसा आनंद, मृषानंद, चौरी आनंद, विषय संरक्षण आनंद, या कि परिग्रह आनंद। अब देख लेना इसमें से कौन कौन सी चीज़ें अपने पास हैं या कौन कौन सी नहीं है। आत्मा की बात करना मुझे अब लगने लगा है कि बहुत सरल है, लेकिन अपने रुद्र परिणामों को रोक लेना शायद बहुत कठिन है। इसलिए पहले करणानुयोग पढ़ने की बात कही गई, द्रव्यानुयोग पढ़ने से पहले, अपने परिणामों को राई रत्ती जानने की जिसके पास ताकत है, वही जाके बाद में कह सकता है कि मैं परिणामों का कर्ता नहीं, ये परिणाम मेरे नहीं है, ये कर्माश्रित परिणाम है। लेकिन कौन कह सकता है? जिसने कर्मों की वास्तविकता को जाना है, जिसने आत्मा की वास्तविकता को जाना, अपने परिणामों को हूबहू जो पहचानता है, राई रत्ती जानता है कि ये किस क्षण कैसा कैसा खेल दिखाते हैं, ये सारा पौद्गलिक खेल है और मैं इसमें हर्षमिषाद करने लग जाता हूँ, ये मेरी गलती है। जो इतना समझदार हो